सामने वैम्पायर को देखकर लड़की पल भर में ही निढाल होकर जमीन पर गिर गई। एक बार फिर उसके सफ़ेद कपड़े मिट्टी से मैले हो गए, चेहरे पर डर के भाव पसरे हुए थे, माथे पर बल पड़ गए थे और वो अपने होश खोकर जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके बेहोश होते ही, पलक झपकते ही, वो साया भी गायब हो गया। एक तेज़ हवा का झोंका आया और वो लड़की अदृश्य हो गई। लगभग 15 मिनट बाद वही काला साया उसी जगह पर आया और सामने बहते झरने को देखते हुए उस पल में खो गया जब वो लड़की वहां झरने के नीचे खड़ी भीग रही थी। उसका भीगा हुआ चांद सा सुंदर मुखड़ा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने अपनी पलकें झुका लीं, जैसे उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा हो। लबों पर सुकून भरी मोहिनी मुस्कान फैल गई। उसने उस लड़की को याद करते हुए खुद से कहा, यहां आया था इस मौसम का आनंद लेने, कुछ पल सुकून से बिताने की चाहत मुझे यहां खींच लाई थी, पर ये नहीं जानता था कि यहां मुझे मेरे बेचैन दिल का करार मिल जाएगा। पता नहीं कभी किसी ने तुम्हें ये बताया या नहीं, पर तुम बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती हो, इतनी हसीन कि तारीफ के लफ्ज कम पड़ जाएं। वो पल जब तुम बेखौफ चंचल नदी की तरह बारिश की फुहारों से खेल रही थीं, कितना खूबसूरत पल था वो। तुम्हारे जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू मन को रोमांचित कर गई थी। अजीब सी कशिश थी तुम में जो मुझे सम्मोहन कर रही थी। तुम्हें निगाहों में बसाने के लालच ने एक पल के लिए भी तुम पर से नजरें हटाने ही नहीं दिया, पर मुझे देखकर तुम्हारा बेहोश होना मेरे इस हसीन ख्वाब को तोड़ गया। एहसास करा गया मुझे कि तुम इन आंखों में बस सकती हो पर जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए तड़प सकता हूँ पर तुम्हें पाने का ख्वाब नहीं देख सकता। बहुत नाजुक दिल की लड़की हो तुम, मेरे साथ तुम्हारा कोई मेल ही नहीं। तुम मेरे बेचैन दिल का करार तो बन गई, पर अब जो बेकरारी मेरे अंदर जगा कर गई हो उसका कोई अंत नहीं है। हम दो अलग अलग योनियों के प्राणी हैं, हमारा मिलन असंभव है। बहुत खास हो तुम मेरे लिए, पर पास नहीं रह सकती। शायद मेरे हिस्से बस यही एक पल आना था, शायद तुमसे दूर रहकर बेचैनी से अपनी जिंदगी काटना ही मेरी नियति है। पर मुझे कोई शिकायत नहीं, आज तुम्हें नजर भर देख पाया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तुम्हारी वो निश्चल मुस्कान हमेशा तुम्हारे लबों पर सजी रहे, यही एक कामना है मेरी। तुम्हें अपनी बाहों में उठा सका ये किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं था मेरे लिए। ये अनमोल पल मेरे हिस्से आया ये की किस्मत की मेहरबानी है। अब तो तुम्हारे एहसासों के सहारे ही जिंदगी बितानी है मुझे। तुम्हें कल कुछ याद नहीं रहेगा, मैं भी नहीं, पर मैं अब तुम्हें कभी ख्वाब में भी भूल नहीं पाऊंगा। उस साए ने अपनी आंखें खोली, एक बार फिर झरने को देखा तो अब भी उसे वहां वही लड़की नजर आ रही थी, पानी में भीगती, हंसती मुस्कुराती। अगले ही पल तेज हवा के झोंके की तरह वो वहां से उड़ गया। उसके वहां से जाते ही एक चमगादड़ उड़ता हुआ वहां आया और अगले ही पल एक वैम्पायर में बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने पलट कर उस झरने को देखा और अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसकी आग सी धधकती लाल भयावह आंखें उसी दिशा में घूर रही थीं जहां से अभी अभी वो साया गया था। अगले दिन सुबह 5 बजे नागपुर में बने एक 2 मंजिला घर के एक छोटे से कमरे में एक लड़की बेड पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। लबों पर मोहिनी मुस्कान फैली हुई थी, जैसे ख्वाब में कुछ अच्छा देख रही हो। अगले ही पल उसके आंखों के सामने एक जोड़ी गहरी नीली डरावनी आंखें और मुंह के दोनों तरफ से बाहर आते दांत आ गए। वो धुंधला सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले ही पल वो चीखते हुए उठकर बैठ गई, पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने आंखें खोली तो आंखों के सामने किसी औरत की तस्वीर आ गई जो सामने की दीवार पर लगी हुई थी। लड़की ने घबराकर नजरें घुमाई, फिर अपनी हथेली से अपना पसीना पोंछते हुए खुद से बोली, ये तो मेरा कमरा है, पर मैं यहाँ कब और कैसे आई? मैं तो कल रात जंगल में थी, मेरे सामने वो वैम्पायर आ गया था। ये कहते हुए उसका बदन कांप गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए याद करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे अच्छे से याद है, ये कोई सपना नहीं था। कल निहाल मुझे जंगल के पास छोड़ आया था और मैं गुस्से में अंदर घुस गई थी, फिर किसी की आहट पाकर मैं बिना सामने देखे भागने लगी थी और शायद दलदल में गिर गई थी। पर फिर मैं बाहर कैसे आई, वहां कैसे पहुंची? कोई था वहां, किसी ने मुझे पकड़ा था और वहां से उड़ा कर ले गया था। वहां मैंने किसी की मौजूदगी को महसूस किया था, कोई था जो मुझे देख रहा था, पर फिर वो वैम्पायर आ गया और मैं डरकर बेहोश हो गई। पर मैंने तो टीवी में देखा था वैम्पायर इंसानों का खून पी जाते हैं, उसने मेरा खून पीकर मुझे मारा क्यों नहीं, और मैं यहाँ कैसे आई? बेचारी लड़की बुरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल उसके साथ आखिर हुआ क्या था। वो बेड पर से उठी और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चली गई। अब भी उसके दिमाग में कल की बातें ही चल रही थीं। बाहर आकर उसने बालों को एक चोटी में बांधा, फिर दुपट्टा गले में डाला तो कल निहाल की कही बातें याद आ गईं और उसका मन कसैला हो गया। उसने अपने उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में पहनी रिंग को देखा, फिर गुस्से में उसे उतारने लगी। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, आन्या। आवाज सुनकर लड़की, जिसका नाम आन्या था, उसके हाथ रुक गए। उसने दुपट्टा ठीक किया और कमरे से बाहर निकली तो सामने ही एक आदमी, एक औरत और उनके साथ निहाल खड़ा था। निहाल को देखते ही आन्या का पारा हाई हो गया और उसने उसे घूरते हुए कहा, अब यहाँ क्या करने आए हो? ये देखने कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? चिंता मत करो, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं कि तुमने सगाई तोड़ दी और उसके गम में मैं अपनी जान दे दूँ। आन्या, ऐसे मत कहो, कल मैंने जो भी कहा वो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। तुम तो जानती हो गुस्से में मुझे पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा हूँ। निहाल ने बेचारी सी शक्ल बनाकर सफाई दी। उसकी बात सुनकर आन्या गुस्से से व्यंग्य भरे लहजे में बोली, हाँ, कल तुमने जो कहा और किया वो सब गुस्से में किया था। तुम्हें पता ही नहीं चला होगा कि तुमने क्या कहा और क्या हुआ। अब समझ आ गई होगी कि तुमने तो बहुत गलत कर दिया मेरे साथ, तो सुबह सुबह मुंह उठाए चले आए मेरे घर। आन्या ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उस औरत ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया और गुस्से से चिल्लाई, ये कौन सा तरीका है निहाल से बात करने का? अपनी तमीज, शर्म, हया सब बेचकर खा गई हो क्या? रहने दीजिए आंटी, गलती उसकी नहीं मेरी है, उसका गुस्सा जायज है। निहाल ने आन्या का बचाव किया तो कावेरी जी ने आन्या की बांह छोड़ दी, पर आन्या के भाव नहीं बदले। वो अब भी गुस्से से निहाल को घूर रही थी। मैंने कल तुमसे जो कहा और तुम्हारे साथ जैसे सुलूक किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज माफ कर दो मुझे। एक मौका दे दो मुझे, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। निहाल ने उससे माफी मांगी, पर आन्या के भाव जरा भी नहीं बदले। उसने तेवर देखकर अब की बार अजीत जी, मतलब उसके पापा ने उसे डांटते हुए कहा, आन्या नजरें नीची करो अपनी, घूर घूर कर क्या देख रही हो उन्हें? वो तुमसे माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दो उन्हें। नहीं करूंगी माफ उन्हें, आन्या ने निर्भय होकर उनसे निगाहें मिलाते हुए कहा, तो वो उसे गुस्से से घूरने लगे। अब आन्या ने निहाल की तरफ घूमकर बेहद गुस्से में कहा,
सही कहा तुमने, तुमने जो कल किया वो तुम दोबारा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? कल तुम गुस्से में थे तो उस सुनसान रास्ते पर जहां दोनों तरफ घने जंगल थे मुझे अकेला छोड़कर चले आए। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि क्या होगा मेरे साथ, तुम्हें दिखा तो सिर्फ अपना गुस्सा। अगर मैं कल मर भी जाती तब भी यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जानती हूँ मैं, पर मुझे पड़ता है फर्क। कल तुमने अपने गुस्से में मुझे क्या नहीं सुनाया, ऐसे ताने मार रहे थे मुझे जैसे मुझसे सगाई करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। पर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास, तुम्हें मुझ में दिलचस्पी थी। मैंने इतनी बार तुम्हें कहा था कि हमारा कोई मैच नहीं है, पर तुम पर ही प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। कितने वादे किए थे तुमने, पर मैं तब भी नहीं मानी थी, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन तुमने हार नहीं मानी, जब मुझे राजी नहीं करवा सके तो मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गए। मैंने इस सगाई और शादी के लिए हाँ अपने मम्मी पापा के दबाव की वजह से की थी। तुम पहले से जानते थे कि मैं ऐसी ही हूँ। मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था कि सोच समझ कर कोई भी फैसला लो, क्योंकि मैं कभी खुद को किसी के लिए नहीं बदलूंगी, कभी भी नहीं। अगर मुझे बदलने के बाद तुम मुझसे प्यार करोगे तो प्यार के रूप में ये धोखा, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे ये सगाई तोड़ते हो, आज मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारे जैसे दो मुँहे सांप के साथ मुझे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना है। आन्या ने अपनी रिंग फिंगर से रिंग निकाली और उसकी हथेली पर रखते हुए बोली, ये पकड़ो अपनी सस्ती सी अंगूठी और निकल जाओ मेरे घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। आन्या आज पहली बार इतने गुस्से में थी। निहाल अवाक सा उसे देखता ही रह गया। जैसे ही आन्या चुप हुई, एक जोरदार चाटा सीधा उसके गाल पर आकर लगा और उसके कान सुन पड़ गए। आंखों में आंसू भर आए। उसने नजरें उठाई तो सामने खड़ी कावेरी जी ने उसके गाल पर एक और चाटा दे मारा और गुस्से से चीखी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि अब तो हमसे बिना पूछे ये रिश्ता तोड़ रही है? पता भी है कितनी मुश्किल से तेरे लिए इतना अच्छा लड़का मिला है? अगर ये रिश्ता टूट गया तो कौन करेगा तुझसे शादी? और क्या गलत कहा दामाद जी ने तुमसे? यही कहा था ना कि उनके दोस्तों के सामने उनके पसंद के कपड़े पहनकर आना, पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी और अब उल्टा उन पर ही चिल्ला रही हो। एक बात तू भी कान खोलकर सुन ले, शादी तेरी निहाल जी से ही होगी और तुझे खुद को उनके अनुसार बदलना ही होगा। नहीं बदलूंगी मैं खुद को किसी के लिए, चाहे आप मुझे मार मार कर जान ले ले मेरी, पर मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी। आन्या भी अब गुस्से में चीखी। अगले ही पल एक बार फिर उसके गोरे गोरे गाल पर एक झंबाटेदार थप्पड़ आकर लगा और आन्या का सर चकरा गया। इस बार चांटा बहुत जोर से लगा था और मारने वाले अजीत जी थे। आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपनी हरकतों को सुधार लीजिए, बहुत जुबान लड़ाने लगी है आजकल। अपनी सीमा मत भूलिए वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारी बेटी हैं, वो गुस्से से गरजे। उनकी बातें सुनकर आन्या की आंखों से आंसू छलक आए। टू बी कंटिन्यू।